अचानक एक सुबह आशिका सिंघानिया के पास उसकी माँ तृप्ति हिल का कॉल आया। तृप्ति ने उसे फैमिली गैदरिंग के नाम पर मिलने के लिए बुलाया था। आशिका, जो एलए में अकेली रहती थी, इस कॉल से काफ़ी खुश हुई। तृप्ति ने पूरे 9 साल बाद आशिका को बिना किसी स्वार्थ के मिलने के लिए बुलाया था, ऐसा उसे लग रहा था। आशिका पुरानी बातें भूलकर काफ़ी एक्साइटेड होकर उससे गई, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे कुछ और ही पता चला। तृप्ति ने जबरदस्ती आशिका को दुल्हन की तरह सजाया और उसकी शादी एक उम्रदराज माफिया स्काई के साथ तय करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से वो शादी नहीं हो पाई, क्योंकि आशिका की शादी पहले से ही किसी के साथ रजिस्टर्ड थी। ये खुलासा आशिका के लिए चौंकाने वाला था। आज तक वो किसी रिलेशनशिप में नहीं आई थी और अब उसे पता चला कि उसकी शादी 5 साल पहले रजिस्टर्ड हो चुकी थी। तृप्ति ने आशिका को 1 महीने का समय दिया, जिसमें उसे अपने पहले पति को तलाक देकर माफिया स्काई से शादी करनी थी। आशिका अपने मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर एलए के उस इलाके में पहुंची जहां वहां के लोअर क्लास लोग रहते थे। उसने वही वेडिंग गाउन पहना हुआ था जिसे घसीटते हुए वो सीढ़ियां चढ़कर अपने किराए के रूम तक गई। आशिका ने एक झटके में कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरा किसी कंप्यूटर लैब से कम नहीं लग रहा था। वहां ढेर सारे कंप्यूटर और अजीब तरह के तार बिखरे पड़े थे। आशिका ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गई। कमरे के एक कोने में अलमारी, बेड और किचन एरिया बना हुआ था। इस जगह पर आशिका अकेले काफ़ी समय से रह रही थी। मुझे उस औरत पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था। अफसोस है कि वो औरत मेरी माँ है। वो मेरी शादी एक माफिया से करवाने की सोच भी कैसे सकती है? ऊपर से वो उम्र में इतना बड़ा था। थैंक गॉड, आज तो मैं बच गई, लेकिन 1 महीने बाद वो फिर आएगा। मुझे खुद को इस मुसीबत से निकालना ही होगा, आशिका ने अपने बाल बांधते हुए खुद से कहा। उसने जल्दी से अपना गाउन उतारा, जिससे उसका दम लगभग घुटने ही वाला था। उसने उस महंगे इवनिंग गाउन को उसने ज़मीन पर ही गिरा दिया और नॉर्मल पैंट्स और लूज टी शर्ट पहन ली। कपड़े बदलने के बाद उसने अपनी सांसों को नॉर्मल किया और थोड़ा बेहतर महसूस करने पर फिर से मैरिज सर्टिफिकेट को देखा। अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ पड़ी? मुझे तो कुछ पता ही नहीं, और मैं शादीशुदा कैसे हो सकती हूँ? मैं तो गलती से भी रजिस्टर ऑफिस तक नहीं गई, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? आशिका ने सिर पकड़कर कहा। वो अपने दिमाग पर जोर डालकर कुछ याद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। तभी उसका मोबाइल बजा। आशिका ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कॉल रिसीव किया। उसने कॉल उठाते ही तुरंत कहा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए रिहान। कॉल की दूसरी तरफ रिहान था। लगभग 26 साल का एक लड़का था। उसका रंग बिल्कुल गोरा, छोटी नीली आंखें और बाल ब्लॉन्ड थे। आर यू सीरियस? जो पूरी दुनिया को हैक करके आसमान से जमीन पर ला सकती है, वो द ग्रेट हैकर ऐश मुझसे हेल्प मांग रही है, रिहान ने हल्की हैरानी जताते हुए कहा। हाँ, यही की आशिका की दूसरी पहचान। कोई नहीं जानता था कि डार्क वेब की दुनिया की नंबर 1 हैकर कोई और नहीं बल्कि 23 साल की ये लड़की थी, जो अपने कंप्यूटर पर उंगलियां चलाकर दुनिया बदलने की ताकत रखती थी। मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ना कि किसी और तरह की हेल्प। जल्दी मेरे घर आ जाओ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, आशिका ने नर्वस होकर कहा। आशिका की आवाज़ से उसकी परेशानी साफ झलक रही थी। रिहान ने ज्यादा सवाल नहीं किए और धीमी आवाज में कहा, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ। आशिका ने कॉल कट कर दिया। वो काफ़ी परेशान थी। ऐसे में उसे इशिका की याद आई। आशिका ने तुरंत इशिका को मैसेज करके सब बता दिया था कि कैसे उसकी शादी एक अनजान इंसान से हो गई थी। हालांकि आशिका ने तृप्ति से हुई मुलाकात और स्काई से शादी की बात को छुपा लिया है। वहीं इशिका रिसेप्शन पार्टी में मौजूद थी जब उसे आशिका का मैसेज मिला। उसने आशिका का मैसेज पढ़ा तो वो भी परेशान हो गई थी। इशिका के कानों में आशिका की बातें गूंजने लगे जब उसने कहा कि उन दोनों की किस्मत एक जैसी है। वहीं पार्टी में अभिमन्यु कुछ गेस्ट के साथ खड़ा हुआ था। उसने देखा कि इशिका अपने मोबाइल की तरफ देख रही थी और उसके चेहरा उतरा हुआ था, तो उसने तुरंत अपने गेस्ट को छोड़ और इशिका के पास आ गया। अभिमन्यु ने पीछे से आकर इशिका को हल्के से हक किया था। वैसे भी वो इस वक्त जहां खड़ी हुई थी वहां आसपास कोई नहीं था। अभिमन्यु के इस तरह हक करने पर इशिका चौंक गई। तुमने मुझे डरा दिया, अभिमन्यु का टच महसूस होते ही इशिका ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। और पता नहीं तुम अचानक ऐसे डर क्यों जाती हो? तुम क्या किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी जो तुम्हें पीछे से यहाँ पर ऐसे गले लगाएगा? मिसेज राजवंश, तुम्हारी हिडन आइडेंटिटी के बारे में मुझे पता है, कहीं कोई हिडन बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? अभिमन्यु ने भौहें उठाकर कहा। इशिका तुरंत अभिमन्यु से दूर हुई और उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। वो उसके कंधे पर हल्के से मारते हुए बोली, बहुत ही बुरा मजाक था। अब तक तो नहीं है मिस्टर राजवंश, पर अगर गलती से कोई आ गया तो तुम झेल नहीं पाओगे। तुम क्या मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा? नक्श से भी बहुत मुश्किल से पीछा छूटा है। डोंट वरी मिसेज राजवंश, तुम सिर्फ मेरी हो। नक्श जैसे ऐरे गहरे आशिकों को दूर हटाना मुझे अच्छे से आता है, अभिमन्यु ने गंभीर आवाज में कहा। उसने महसूस किया इशिका अभी भी परेशान लग रही थी। अभिमन्यु ने इशिका के गाल पर हाथ रखा और उसे प्यार से पूछा, बताओ क्या हुआ है? आशिका प्रॉब्लम में है अभिमन्यु, मैं नहीं चाहती जो मैंने अपनी लाइफ में झेला वो सब आशिका को सहना पड़े। मैंने हमेशा उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार किया है, इशिका ने जवाब दिया और फिर अभिमन्यु को मैसेज दिखाया। ये तो सच में काफी अजीब है,
लगता है आजकल अननोन हस्बैंड मिलने का ट्रेंड चल रहा है। डोंट वरी, पार्टी खत्म होने के बाद हम ऐश से बात करेंगे और उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब तुम स्ट्रेस मत लो, मत भूलो तुम्हारा साथ अब हमारा बच्चा भी जुड़ गया है, अभिमन्यु ने इशिका को प्यार से समझाया। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी, वो भी आशिका से बात करना चाहती थी पर अभी सही वक्त नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रिहान, जो आशिका के घर के आसपास ही था, अगले 10 मिनट में अपनी लग्जूरियस गाड़ी में उसके पास पहुंच गया। उस गाड़ी को देखकर आसपास के लोग हैरानी से उसे ताकने लगे। रिहान ने उन्हें इग्नोर किया और आशिका के पास पहुंच गया। उसे देखते ही उसने गहरी सांस ली और कहा, कम ऑन यार ऐश, सबसे पहले तो अपना घर बदल लो। तुम्हें पैसों की क्या कमी है जो तुम्हें सड़ी सी जगह पर रहती हो? कितना डाउन मार्केट एरिया है और ऊपर से तुम्हारा घर, ये मुझे घर कम किसी कंप्यूटर इंजीनियर के वर्क प्लेस जैसा ज्यादा लगता है। मुझे यहीं सेफ लगता है। तुम्हारे लिए ये जगह गंदी या डाउन मार्केट हो सकती है, लेकिन इस जगह ने मुझे बहुत सहारा दिया है, आशिका ने मायूस होकर जवाब दिया। रिहान उसकी तकलीफ को समझ सकता था। तृप्ति ने अचानक एक क्रिश्चियन आदमी से शादी की और एले में शिफ्ट हो गई थी। उसने आशिका को हमेशा अपने लिए बोझ समझा। कुछ साल तक उसे अपने पास रखने के बाद जब आशिका 14 साल की हुई, तृप्ति ने उसे घर से निकाल दिया, ये कहकर कि विदेशों में बच्चे अपना खर्चा खुद उठाते हैं। आशिका के लिए एक अनजान जगह पर अपनी पढ़ाई जारी रखना और रहने की जगह ढूंढना बेहद मुश्किल था। स्कूल में उसकी मुलाकात रिहान से हुई थी, जो कंप्यूटर को एक अलग नजरिए से देखता था। आशिका ने रिहान से बहुत कुछ सीखा और आज अपनी मेहनत के दम पर वो रिहान से भी आगे निकल चुकी थी। आशिका के परेशान चेहरे को देखकर रिहान को तुरंत समझ आ गया कि उसकी परेशानी का कारण कोई और नहीं बल्कि तृप्ति ही होगी। रिहान ने गहरी सांस ली और कहा, अब क्या किया है तुम्हारी पूजनीय माता जी ने?
इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दी, तुम यकीन नहीं करोगे। उन्होंने मुझे डिनर के बहाने घर बुलाया, फिर बोला कि हमें शादी में जाना है। मुझे एक महंगा सा ड्रेस देकर जबरदस्ती तैयार कर दिया। वो मेरी शादी करवाने वाली थी, वो भी एक माफिया के साथ जो उम्र में मिस्टर हिल से भी बड़ा था। आशिका ने भारी आवाज में तृप्ति की सारी चाल रिहान को बता दी। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर उसकी शादी रजिस्टर नहीं हुई होती, शायद इस वजह वो उस बूढ़े आदमी के बाहों में होती। रिहान आशिका के पास आया, उसे गले लगाया और सहलाते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, उनसे मिलना बेकार है। तुमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं बदला और ऊपर से वो तुम्हारा घर का एड्रेस भी जानती है। बाकी सब तो ठीक, लेकिन तुम उस मुसीबत से बाहर कैसे निकली? आशिका रिहान से अलग हुई और परेशान चेहरे के साथ बोली, समझ नहीं आ रहा कैसे सब समझाऊं। एक मुसीबत से निकलती हूँ तो दूसरी मेरे सिर पर पहले से तैयार रहती है। मेरी शादी रजिस्टर नहीं हो पाई क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। रिहान, जो आशिका को पिछले 10 साल से जानता था, हैरानी से आंखें बड़ी करके बोला, तुम मजाक कर रही हो ना ऐश, तुम किसी से कैसे शादी कर सकती हो? ठीक है, तुम उम्र में मुझसे छोटी हो, लेकिन मेरी बॉस हो, फिर भी हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता है। तुम मुझसे कुछ छुपकर नहीं करती, फिर तुम शादी कैसे कर सकती हो और मुझे क्यों नहीं मिलवाया? मजाक मत करो रिहान, मुझे सचमुच नहीं पता कि मेरा पति कौन है। मुझे एक मैरिज सर्टिफिकेट जबरदस्ती पकड़ा दिया गया, आशिका ने कहा और सर्टिफिकेट रिहान को थमा दिया। रिहान ने मैरिज सर्टिफिकेट को गौर से देखा, फिर उसका डेटा वहां रखे कंप्यूटर में डालना शुरू किया। थोड़ी देर की छानबीन के बाद उसने आशिका की तरफ देख कर कहा, ये डेटा रियल है ऐश? यही तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझे तलाक लेने की धमकी दी है, लेकिन मैं तो अपने पति को जानती भी नहीं। ये अभिमान राजवंश है कौन? क्या इसे इस शादी का पता होगा? आशिका ने हताश और थोड़ा चिढ़कर कहा। रिहान ने अभिमान की डिटेल्स के आधार पर दोबारा सर्च शुरू किया। उसने आशिका को कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखने का इशारा किया। स्क्रीन पर एक ही नाम के कम से कम 10 लोग दिख रहे थे, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो से किसी का चेहरा मेल नहीं खा रहा था। आशिका और ज्यादा परेशान हो गई। उसने रिहान की तरफ देखकर कहा, माफिया से बचने का रास्ता तो हम निकाल लेंगे, लेकिन पहले इस पति को ढूंढना होगा। ठीक है, फिर चलते हैं, इन 10 जगहों पर जाकर तुम्हारे मिस्टर अननोन हस्बैंड को ढूंढते हैं, रिहान ने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा और आशिका को स्माइल करने का इशारा किया। आशिका मुस्कुराने के बजाय मुंह बनाकर बेड पर बैठ गई। उस वक्त उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। उसने सिर पकड़कर मन ही मन सोचा, अगर मैं सचमुच इस इंसान की पत्नी हूँ तो क्या वो जानता है कि हम दोनों शादीशुदा हैं? अगर हाँ तो वो अब तक मेरे पास क्यों नहीं आया? उसे तो पता होगा कि हमारी शादी कैसे हुई होगी। आशिका के दिमाग में ढेर सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनके जवाब नहीं मिल रहे थे। वो बस परेशान होकर सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मुंबई में उस वक्त रात के लगभग 10 बजे थे। एक आलीशान महल जैसे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड्स और हाउस हेल्पर्स के अलावा वहाँ किसी के होने का एहसास तक नहीं था। ये राजवंश विला था,
मुंबई की सबसे अमीर बिजनेस फैमिली का घर। तभी वहां एक काले रंग की बेंटले कार पार्किंग एरिया में आकर रुकी। गाड़ी की बैक सीट पर एक लगभग 27 साल का आदमी बैठा था, जिसने ब्रांडेड ब्लैक सूट पहना हुआ था। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो घर में दाखिल होने लगा। उसकी हाइट लगभग 6 फीट थी, बॉडी थोड़ी लीन पर परफेक्ट, आंखें गहरी काली, नाक पर लेफ्ट साइड उभरा हुआ तिल, क्लीन शेव्ड और चेहरा सख्त। लेकिन उन आंखों में कोई भाव नहीं था, जैसे उसे अपने आसपास की चीजों या लोगों से कोई फर्क ही न पड़ता हो। वो अभिमान राजवंश था, AR एम्पायर का CEO। अभिमान अपने कदम बढ़ाता हुआ चल रहा था, तभी उसके पास एक कॉल आया। मैंने आपको गुड न्यूज देने के लिए कॉल किया है, सामने से एक आदमी की आवाज आई। बोलो, अभिमान ने बिना किसी भाव के छोटा सा जवाब दिया। मैं आपके डैड पर पूरी नजर रख रहा हूँ, मुझे पता चला है सुबह वो एक लड़की से शादी करने गए थे, उस आदमी ने थोड़ा डरते हुए कहा। ये सुनकर अभिमान का हाथ अपने मोबाइल पर कस गया। उसके चेहरे के भाव और सर्द हो गए। उसकी आंखों के सामने अपनी बीमार माँ का चेहरा घूमने लगा, जो न जाने कितने सालों से अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। अभिमान के डैड को अपनी पत्नी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनकी हरकतें अभिमान से छुपी नहीं थी। वो उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखता था। जब उसे पता चला कि उसके डैड उसकी माँ को धोखा देकर किसी और लड़की से शादी करने जा रहे थे, तो उसके चेहरे पर नफरत के भाव उभर आए। तो तुम मुझे बधाई देने के लिए कॉल कर रहे हो, अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, जिससे वो आदमी घबरा गया। अरे नहीं, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया कि किसी वजह से वो शादी रुक गई है, लेकिन मैंने पता किया है कि मिस्टर स्काई उस लड़की से शादी करके रहेंगे, उस आदमी ने बताया। मुझे उस लड़की की डिटेल्स भेजो, मैं भी देखता हूँ कि वो आदमी एक लाश से शादी कैसे करता है, अभिमान ने गुस्से भरे अंदाज में कहा और कॉल कट कर दिया। उधर उसका आदमी अभिमान के ऑर्डर्स मिलते ही आशिका की डिटेल्स निकालने में जुट गया था। वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा, लेकिन अगर नहीं समझा तो बता दूं कि अभिमान और स्काई के बीच क्या रिश्ता हो सकता है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले चैप्टर में मिलते हैं, और थैंक्स इस कहानी के नए फेस को भी पसंद करने के लिए।